ओम शांति। सात तारीख के साकार मूल्य हम आप सभी रिवाइज कर रहे हैं। उस मूल्य में बाबा ने खास कहा था कि यह बड़ी मीठी और अलौकिक अवस्था है। उसके बारे में बाबा ने कहा था कि बाप बच्चों से पूछते हैं, शकल से भी देखते हैं और उनके अवस्था को चेक भी करते हैं, जांच भी करते हैं कि बच्चे किस खुशी में बैठे हैं और बाप से कितना लव है। जब बच्चे बाप के सम्मुख आते हैं तो बाप बच्चों को खींचते हैं, सकास देते हैं, करंट देते हैं, जिससे बच्चे इस देह और देह की दुनिया को पूरा भूल जाएं, एक बाप के लव में लवलीन रहें। तो बाबा ने कहा कि ये बहुत ही बड़ी मीठी और अलौकिक अवस्था है। तो बाबा इस संसार में आए हैं आप समान मीठा बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में भी इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जब आप हम सभी की संगम योगी इसी अलौकिक और मीठी अवस्था का यादगार है। कौन सा यादगार होगा? इसी मीठी और अलौकिक अवस्था का यादगार क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए। किस अवस्था में लेटे हुए हैं? इसी मीठी और अलौकिक अवस्था में। लेकिन उसका आधार क्या है? क्योंकि सागर में अनेक प्रकार की लहरें उठती रहती हैं, लहरें आती हैं और जाती हैं, लेकिन उन लहरों के बीच में होते हुए भी उनकी अवस्था कितनी श्रेष्ठ है, जो उन लहरों का उनके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो चिंतन में खोए हुए हैं, विचारों में मगन हैं। तो जो गीता का ज्ञान है, उस गीता ज्ञान के चिंतन में मगन है, और मगन अवस्था ही वो मीठी और अलौकिक अवस्था है। तो बाबा ने आप हम सभी को इस ऐसी मीठी अवस्था बनाने के लिए जो अनेक प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है इस जीवन में रहते हुए, क्योंकि हमारा ये अलौकिक जीवन है, इस जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं तो आती ही हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। तन की व्याधियों के रूप में, मानसिक डिस्टर्बेंस के रूप में, परिवार में, समाज में, संबंधों में टकराव के रूप में, मन मिटाव के रूप में, ईर्ष्या, हसद, द्वेष इनके रूप में आती हैं, या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आती हैं। तो जीवन में लहरें तो हर एक के सामने आती ही रहती हैं, लेकिन उन लहरों के बीच में होते हुए भी हमारी अवस्था मीठी बनी रहे और अलौकिक रहे, उसके लिए बाबा ने हमें यह ज्ञान दिया हुआ है। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को यदि हम चिंतन में लाते हैं, उसको रमन में लाते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो जो अनेक प्रकार की लहरें जीवन में आती हैं, उन लहरों के होते हुए भी हमारी अवस्था अलौकिक रहती है, मीठी रहती है। तो इसकी कई प्रकार की विधियां हैं, जैसे कि हम एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव जब करते हैं तो उसमें हमारी अवस्था मीठी और अलौकिक रहती है, क्योंकि एक बाप के साथ सर्व संबंध जो हैं वो सुखदायी संबंध हैं, उनमें कोई प्रकार के डिस्टर्बेंस नहीं है, आत्मा को सुकून देने वाले हैं, मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। तो जहाँ मन को सुकून है, खुशी है, मनोबल श्रेष्ठ है, तो वहाँ अवस्था मीठी है, श्रेष्ठ है, अलौकिक है। तो इसी प्रकार से जो बाबा ने अनेक प्रकार की विधियाँ बताई हुई हैं, उन विधियों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो हमारी ये ब्राह्मण जीवन है वो मीठी और अलौकिक बनी रहेगी। तो इसी का यादगार भक्ति मार्ग में उस रूप में दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप ही आपका संसार है, उस संसार में हमेशा खोए रहो, उस संसार में डूबे रहो। तो उस संसार में यदि आप डूबे रहेंगे तो इस संसार से आने वाली जो भी बातें हैं उन हर एक बातों से आप सेफ रहेंगे और आपकी अवस्था हमेशा ऊंची श्रेष्ठ रहेगी, अलौकिक रहेगी। तो ये मुरली का सार था, मुरली की पॉइंट थी एक, जो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप देखते हैं और जांच भी करते हैं, उनके शकल से भी देखते हैं कि बच्चे किस खुशी में बैठे हैं, कौन सी खुशी है, सांसारिक प्राप्तियों से होने वाली खुशी है या फिर एक बाप से प्राप्ति होने वाली खुशी है, अल्पकालीन खुशी है या फिर स्थायी खुशी है, और बच्चे कौन से लव में बैठे हुए हैं, एक बाप के प्यार में लवलीन है या फिर सांसारिक आत्माओं के प्यार में खोए हुए हैं। यदि एक बाप से प्यार है तो आपकी अवस्था हमेशा ही मीठी और अलौकिक रहेगी। ओम शांति। हाँ, उसके लिए एक बात जब भी है कि साक्षी भाव, जितना हम इस संसार से उपराम रहेंगे, साक्षी रहेंगे, तो इस संसार की कोई भी बात हमारे स्थिति पर, हाँ, ड्रामा में जो भी बातें होती हैं, यदि हम उनको साक्षी होकर देखते हैं, क्योंकि ड्रामा में वैरायटी बातें, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, कर्म कहानी है, तो उन सब बातों को यदि हम साक्षी होकर देखते हैं तो उन पर हमारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारी स्थिति अलौकिक और मीठी बनी रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति। कल आप लोगों ने सुना है चटपटा और कटपटा के बारे में, आज हम सुनते हैं अटपटा के बारे में। अटपटा माना अनबिलीवेबल थिंग्स, वो इजीली बिलीव नहीं कर सकते, वंडरिंग थिंग्स रहते हैं। दुनिया वालों को फिजिकल वंडर्स के बारे में पता है, सात वंडर्स के बारे में, चीना वाल और ताजमहल के बारे में पता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वंडर्स के बारे में, अटपटा के बारे में किसी को पता नहीं है। परमात्मा ही आकर वो रिवील करता है। वो ऐसे सात बातें हम आज देखेंगे। परमात्मा निराकार फिर भी वो साकार तन में आकर हमको पढ़ाता है। कोई भी बिलीव नहीं कर सकता है, परमात्मा खुद आकर इस दुनिया में हमको पढ़ाता है करके। वो आकर हमको पहला ज्ञान देता है आत्मा के बारे में, तुम शरीर नहीं आत्मा हो करके। तुम बाबा ज्ञान देता है हमको मनुष्य से देवता बनने के लिए। और सेकेंड पॉइंट है, परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, वो फिर भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। जब नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा भी लास्ट में कर्म योग और कर्म भोग के लड़ाई चली, तो बाबा भी कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब बाबा भी ड्रामा की बंधन में बंधा हुआ था, बाबा ही भोगना पड़ता था, ब्रह्मा बाबा ही। तब कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई चली तो कर्म योग ही जीता। इसलिए बाबा कहते हैं योग है याद है तलवार की धार है करके। और थर्ड पॉइंट है, बाबा आकर हमको बताया आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो भी 84 जन्मों का पार्ट ऐसे भरा हुआ है, सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट नहीं होता है, उसमें ऐसे पार्ट भरा हुआ है। हम इतना छोटी सी बिंदु शरीर को चलाता है, वो भी बाबा आकर ऐसे बातें बाबा हमको बताया। और फोर्थ पॉइंट है कि शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष है करके, लेकिन बाबा आकर हमको पता है कल्प की आयु 5000 वर्ष। वो भी कैसे डिवाइड होता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, किसी भी मनुष्य को पता नहीं था कैसे ड्रामा चलता है फिरता है करके, लेकिन बाबा आकर ही हमको ऐसे बातें बताया। फिफ्थ पॉइंट है कि भक्ति मार्ग में हम शांति सुख के लिए ऋषि मुनि सन्यासी सभी लोगों को मांगते थे, मूर्तियों के पास जाके मांगते थे सुख और शांति के लिए, लेकिन बाबा आकर सुनाया सुख और शांति आपका अंदर ही है, बाहर भटकने का जरूरी नहीं है। वो बाबा आकर हमको और सब खजानों का अधिकारी बना दिया हमको। और सेवेंथ पॉइंट है कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, आत्मा अविनाशी है। बाबा आकर हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में आकर बताया, मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। साइंस के भी ऊपर साइलेंस की शक्ति है।
ओम शांति। हमें जो टॉपिक दिया गया था वो था आत्मप्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। तो जीवन में चलते चलते कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमें सत्य से दूर कर देते हैं, सत्य से वंचित कर देते हैं, हमें स्वयं को स्वयं से दूर कर देते हैं, हमें असत्य की ऐसी गहरी खाई में, ऐसे गहरे जाल में फंसा देते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उन असत्य कर्मों का हमारे अंतर मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। और सबसे बड़ा जो असत्य है जिसका हमारे अंतर मन पर सबसे गहरा और ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है वो है देह अभिमान। देह अभिमान ही हमें सबसे ज्यादा नीचे गिराता है। देह अभिमान ही क्या है कि जितनी भी सारी आत्म प्रवंचनाएं हैं उन सबका मूल कारण है देह अभिमान। और सेल्फ डिसेप्शन का भी मूल कारण क्या है? देह अभिमान, जिसमें हम स्वयं स्वयं से कपट करते हैं, स्वयं स्वयं को धोखा देते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हम स्वयं से कपट करते हैं, स्वयं को ठगते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है जो परसों की मुरली से था, बाबा ने कहा कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा में रहोगे तो क्या होगा? कट उतर जाएगी, क्योंकि याद है तलवार की धार। बाबा ने कहा कि इसमें स्वयं को ठगना नहीं है, सच्ची याद करनी है, झूठी याद करके स्वयं को ठगना नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो स्वयं का रॉन्ग चार्ट दे देते हैं कि हम बाबा की याद में थे, बाबा के साथ थे। लेकिन बाबा ने क्वेश्चन किया कि क्या सचमुच आप बाबा की याद में थे? उसके आगे बाबा ने सच्ची याद की डेफिनेशन दी है। बाबा ने कहा कि बिल्कुल साइलेंस में चले जाना, जहां ये पूरी सारी पुरानी दुनिया आपको भूल जाती है, देह देह के सभी धर्म भूल जाते हैं, वो है सच्ची याद, जिसमें आप बहुत गहरे अंतर में साइलेंस में चले जाते हैं, जहां आपको देखकर भी फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनकर भी कुछ सुनाई नहीं देता है। आपकी आंखें स्थूल आंखें खुली रहती है योग में, लेकिन फिर भी आपको सामने क्या चल रहा कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने अंदर में उतरते जाते हैं और आपको सूक्ष्म आंखों से, मन बुद्धि की आंखों से फिर वो दिखाई देता है जो साइलेंस होता है। आप उस साइलेंस को सुन पाते हैं, आप उस साइलेंस को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उस साइलेंस को अनुभव जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम बिन द पॉइंट ऑफ लाइट हैं। मान लीजिए उसके चारों तरफ कट लगी हुई है या उसके ऊपर कट लगी हुई है विकारों की, तो जब हम याद करते हैं तो या तो बाबा से शक्ति लेते हैं, तो वो जब एनर्जी मुझ आत्मा में प्रवेश करेगी तो वो कट को भेदते हुए अंदर जाएगी जिससे कट निकलेगी, या मैं सकाश दे रही हूं अपने सत्य स्वरूप में टिकी हूं तो मुझसे एनर्जी निकलकर दूसरी आत्माओं तक जा रही है, प्रकृति तक जा रही है, तो उस कट को भेदते हुए बाहर जाती है, जिससे हमारी कट क्या हो जाती है, निकल जाती है। हिंदी वाला बिकार वाला खाद जिसको बाबा कहते हैं, हाँ, तो वो फिर नष्ट तो वो निकलने लगती है ना, विकर्म विनाश होने लगते हैं। कहने का मतलब फिर हम जब योग से उठते हैं तो हमें लाइट अनुभव होता है, ऐसा लगता है हल्का हल्का सा प्रकाश का शरीर है हमारा। परंतु यदि हम देह अभिमान में बाबा को याद करते हैं तो कट निकलती नहीं है। उस समय क्या होगा कि हम नेगेटिव एनर्जी खींचेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी उस कट को और ज्यादा बढ़ाती जाएगी। फिर क्या कहते हैं हम कि ये बहुत योग करते हैं, ये बहुत ज्ञानी आत्मा है, फिर भी क्रोध कर देते हैं। कहते हैं ना क्रोध कर देते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कट को बढ़ाया है, उन्होंने उसको कम नहीं किया है। तो बाबा ने कहा कि झूठी याद कैसे करते हैं? बच्चे योग में बैठे हैं, देख रहे हैं ये आ रहा है, वो जा रहा है, हिल रहे हैं, फिर शांति स्तंभ पे कौन परिक्रमा कर रहा है वो भी दिख रहा है, ये हट जाता तो मैं बाबा से सकाश ले लेता। स्थूल स्तर पे बैठे रहते हैं, सूक्ष्म अंदर में प्रवेश नहीं करते, झूठी याद करके खुद को ठगते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने मुरली में महारथियों के लिए कहा था कि गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है, वो भी नाम रूप से खुद को ठग लेते हैं। पर हम ज्ञानी आत्माओं के लिए है कि हम कैसे खुद को ठगते हैं। हम विकार के लिए किसी के नाम रूप में नहीं फंसते हैं, उससे तो हमारी चेतना काफी ऊपर उठ गई है ऊपर, लेकिन हम नाम रूप में ऐसे फंसते हैं कि उस आत्मा के गुण विशेषताओं में फंसने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। कैसे होता क्या है कि बाबा सागर है, उसकी एक बूंद उस श्रेष्ठ महारथी आत्मा में आई है, तो हम डायरेक्ट अव्यक्त होकर उसे नहीं ले पाने में सक्षम हैं, हम साकार में हैं, तो उस साकार श्रेष्ठ आत्मा में जो उसकी बूंद है, वो बूंद जब हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके चाल चलन से हमें अनुभव होती है, बाबा की महसूसता होती है, उनमें बाबा दिखाई देता है, हम बाबा का उसमें अनुभूति करते हैं, तो हम उनके नाम रूप में फंसने लगते, फिर हम उनको सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, लेकिन है तो वो भी अपवित्रता, वो भी हमें गिराती है। तो बाबा इसका एक ही उपाय बताते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें क्या करो, क्या एक ही उपाय है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, अपनी अव्यक्त स्थिति ज्यादा से ज्यादा बनाने की हम कोशिश करें, ताकि डायरेक्ट हम उस अव्यक्त बाप दादा से शक्ति ले सके, स्वयं को ठगे नहीं किसी के नाम रूप में फंसकर। फिर थर्ड पॉइंट है वैराग, वैराग के लिए बाबा ने एक लाइन कहा है, झूठे वैराग के द्वारा हम खुद को ठगते हैं। वैराग तो वो अवस्था होती है जहां चेतना को कोई राग नहीं होता है, वो वीतराग होती है ना, बिल्कुल न्यारी न्यारी सी होती है, इस पुरानी दुनिया से डिटैच सी। पर इसमें क्या होता है, झूठे वैराग में बच्चे सोचते हैं हमको तो वैराग है, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, पुरानी दुनिया छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर आए हम वैरागी हैं, लेकिन यहां आकर फिर नाम रूप, नाम मान शान पद पैसे, पता नहीं किस किस चीज में उलझने लगते हैं, श्रीमत के विरुद्ध हम कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ कर लेना चाहते हैं, है ना, चाहना इच्छाएं खत्म हो जाती वैरागी आत्मा की, वो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाती, पर यहां तो इच्छाएं उठने लगती हैं। तो हम खुद की चेकिंग करके चेक करें कि मैं खुद झूठे वैराग के द्वारा खुद को ठग तो नहीं रही हूं, कहीं मैं उस वैराग अपवित्रता करके उस वैराग के सागर से दूर तो नहीं हो रही हूं। फिर अगला पॉइंट था कल की मुरली से, बाबा ने वरदान में कहा था अटल निश्चय, ऐसा निश्चय जो टल नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा था कि जब अटल निश्चय है, कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ शारीरिक पेपर आ जाते हैं या मोह के पेपर आ जाते हैं या कुछ भी आ जाते हैं, तो उस समय सालों की तपस्वी आत्मा जो सालों से तपस्या कर रही, योग कर रही है, वो भी हलचल में आ जाती है। क्यों हलचल में आ जाती है, क्यों हलचल में आ जाती है, शायद इसलिए हलचल में आ जाती है कि उन्होंने देह अभिमान में योग तपस्या की होती है। तो हम चेक करें कि हम खुद को ठग तो नहीं रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है जज करने की आदत, चेतना को जज करने की, जब नए नए आते तब तो सबसे ज्यादा जज करते हैं कि भगवान के बच्चे हैं तो कैसे होने चाहिए, है ना, तो हम जब देखते हैं कि ये तो मुरली रेगुलर नहीं करते हैं, ये तो योगी नहीं करते हैं, ये तो संपूर्ण धारणाओं में नहीं है, ये तो बाहर का खा लेते, आदि आदि ढेर सारी बातें हैं। तो इस जज करने की आदत से क्या होता है, हम स्वयं से दूर होकर परचिंतन परदर्शन में लग जाते हैं, जबकि हमें बाबा तो कहता है कि खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब उस खुदा का प्यार हमें मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा उसका प्यार, मासी का घर नहीं है उसका प्यार पाना। तो तो बाबा ने तो हमें खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को बाबा जाने, वो गुड़ जाने, उसकी गोथरी जाने जो बाबा कहता है। फिर अगला पॉइंट है अहंकार आ जाता है, ज्ञानी योगी आत्मा अहंकार के द्वारा खुद को ठगने लगती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये मुझसे कम है। पर कई बार क्या होता है, वो जो हमको कम आत्माएं दिख रही है उनको ज्यादा अनुभूतियां हो जाती हैं, अनुभव हो जाते हैं, और हम अहंकार के कारण इम्प्योरिटी करते हैं और हमको अनुभव नहीं होते हैं। तो हमें खुद पर अटेंशन रखना है, अपनी भेद दृष्टि मिटानी है, बाबा के समान ऊंची जो परम धाम की उनकी श्रेष्ठ दृष्टि है कि सबको बाबा समान देखता, जो प्यार वो नंबर वन आत्मा को करता है वही अंतिम आत्मा को भी वो उतना ही प्यार करता है। तो हमें भी अपनी भेद दृष्टि मिटानी है, जैसे वो गीत है ना जिसमें कहा गया, कौन है जिससे तुझे प्यार है नहीं, प्रभु आपकी उदारता का पार है नहीं, कौन है जिससे उसे प्यार नहीं, वो तो हर एक से प्यार करता है, फिर हमें कमी कमजोरी क्यों दिखे, हम खुद को श्रेष्ठ क्यों समझें। तो हमें खुद पे अटेंशन रख के खुद को ठगना नहीं है, अहंकार को दूर करना है। फिर अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, बाबा ही संसार मेरा, पर क्या वाकई में हमने पाना था उसको पा लिया है जिसे दुनिया भगवान कह रही है, जिसे साधु संत महात्माएं गुफा कंदराओं में सब में ढूंढ रहे हैं, क्या उससे वाकई में हमने पा लिया है क्या, तो हम चेक करें, है ना, ये तो हमारी चेकिंग का पॉइंट है कि बाबा वाकई में हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो चेक करके, ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद फिर हम, जब समय ना रहे तब हमें ये भासना आए कि वाकई में मैं खुद को ठग रही थी, पर उस समय तो चेतना अंदर से बहुत चीत्कार करने लगेगी, पुकारने लगेगी कि अब क्या। पर एक है जो बाबा है, जो सागर है, जो हमें संभाल सकता है ना, हमें सवार सकता है, तो हमें उसके प्रति अपना सर्व समर्पण करना चाहिए, उसका शरणागत होकर के खुद को भरना चाहिए, वो हमें सवार भी देगा और संभाल भी लेगा। अच्छा, ओम शांति।
7 तारीख मुरली में बाबा ने ड्रामा के ऊपर कहा था, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, कभी बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाना है, ये प्रबंध करना है, बच्चे नाम रूप में फंसना चलायमान हो जाते हैं, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बाबा को, ये सब ड्रामा है ये कहा था। और कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाबा का है, ये भी ड्रामा ही है। ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं है, सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। तूफान तो बहुत आएगी, ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। और पॉइंट बताया बाबा ने, हम बच्चे सर्व का कल्याण करने के लिए याद का जौहर धारण करना है, वाणी से कशिश होना चाहिए, यह भी ड्रामा है, कोई खामी नहीं होना चाहिए। और बेहद बाबा बेहद रचना का ज्ञान दे रहे हैं, इसको ही ड्रामा कहते हैं। और स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर को ज्ञान प्रकाश दे रहे हैं, और तीन लोकों की, तीनों कालों की ज्ञान बता रहे, यही ड्रामा है। और बाबा ने हमें अपना बना के ABCD का ज्ञान दिया है, ये ड्रामा है। ये माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना सर्किल, डी माना ड्रामा। सृष्टि के आदि मध्यांत ज्ञान समझना ही ड्रामा को समझना है। और बाबा कहते हैं ड्रामा का हर सीन हूबहू रिपीट होता है, 5000 वर्ष पहले भी हम मिले थे, अभी ऐसा ही मिल रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही मिलेंगे। और कोई लोग ड्रामा फिक्स, हमारा पार्ट भी फिक्स, ऐसा समझ के अलबेलापन में आ जाता है। बाबा मुरली में क्लियर बताया है, संगम युग में पुरुषार्थ करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और लास्ट आने वाले भी फास्ट चले जा सकते हैं, लास्ट आने वाला भी फास्ट चले जाएंगे। और बाबा ये भी कहा, 3 बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु याद रखना है। और 4 नीचे है, हमारे ऊपर नीचे, बाबा के ऊपर नीचे, ये 2 नीचे पक्का होता है, और 2 नीचे है परिवार के ऊपर नीचे और ड्रामा के ऊपर नीचे, ये थोड़ा इधर उधर हो जाते। ड्रामा नीचे माना ही बीती हुई बातें, संकल्प बोल में भी कभी आना नहीं चाहिए। जो अकेला रहता है बहुत प्यास लगता है, ड्रामा में है तो मैं पानी पीऊंगी, अभी सब बैठे रहे तो क्या होगा, वो तो उठना ही है, पानी लेके पीना ही है, बस ड्रामा माना पुरुषार्थ करके हमारा ड्रामा को हम ही बनाना है। कल तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन अभी से जो ड्रामा है हमारा हाथ में है। ड्रामा ज्ञान को समझकर सदा पॉजिटिव लेना चाहिए। दादी एक बार ओम शांति भवन में क्लास कराने के आई थी, एकदम बैठते बैठते नीचे गिर गई थी, सभी को हमको ये लगा, लेकिन दादी 1 सेकंड में उठ के यही ड्रामा है ऐसा बोल दिया, दादी प्रकाश मणि जी। और ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग में अकल्याण है ही नहीं है। और ड्रामा में कुछ भी होता है उसमें कल्याण समाया हुआ है, और नया कुछ भी नहीं है, ड्रामे में कोई भी बात गलत नहीं है। और ड्रामा दुखी होने से बचाता है और ड्रामा दूरादेशी बनाता है। ड्रामा एक चाकू है, उसको यूज करने की अकल तरीका होना चाहिए। ड्रामा एक डाल है, हर परिस्थिति में ड्रामा ज्ञान बचाता है। और ये भी ड्रामा है, ड्रामा डाल है, यहां से तलवार भी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो न है और भी अच्छा है। ये ड्रामा है। ओम शांति,
ओम शांति। पेपर, खेल, वैरायटी, सीट पर सेट, तो सीट पर सेट हो गए, वैरायटी देख रहे हैं, परिस्थिति, परिस्थिति, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, परिस्थिति। और ड्रामा का राज जानते जानते बहुत सारे अपने राज जान लिए, और क्यों, क्या, कैसे, सारे प्रश्न खत्म हो गए। अपने राज ऐसे जाने, कभी एक संकल्प पे कभी नहीं टिक पाए। ड्रामा का राज भाई जी ने बोला तो उसके कारण दो दिन से जब तक हमारा इधर नहीं पहुंचना हुआ ना, सिर्फ ड्रामा के राज के अलावा कुछ पता नहीं था। योग में तीन दिन से ज्यादा, तीन घंटे कभी नहीं बैठा। ड्रामा का राज, क्या क्या राज है, क्या राज है। और एक और चीज जो गहरी बात है, हमको इस स्थान में पहुंचने के लिए करीबन 9 वर्ष लग गए, और यहां क्यों पहुंचना था वो यहां के हमको पता चला। तो जैसे कल की मुरली बाबा ने कहा था ना, एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर, जो एक्टर होता है वो तीनों को नहीं जानता तो पार्ट प्ले नहीं कर पाता। तो खेल, अब इसको भी खेल समझना है, इजी हो गया खेल। परिस्थिति पार कर ली, पेपर है, पेपर पार कर ली, उधर छुप गया था पहले, भाई जी की नजर थी, पकड़ लिया उन्हें। तो यहां तक पहुंचने के लिए कहें तो भाई जी की वाणी ने खींच लिया। जबलपुर से, गांव से, कहां से यहां पहुंच गए पता नहीं चला। और जो बातें, क्लासेस कितनी सुनी होंगी हमने, बहुत कुछ सुना होगा, सब ड्रामा, बिंदी, कितना कुछ सुना, सब बिंदी कर दिया। अब एक और चीज याद आई कि वो चंडिका देवी के बारे में शायद उत्तर गहरा बाबा बोलता नहीं है, हमारे इधर ये मेला बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर देवी देवता को नहीं मानते लोग जितना चंडिका देवी को मानते हैं, और उतनी छोटी बात के लिए बाबा ने इतनी गहरी बात कह दी। चार्ट जो नहीं लिखते बच्चे वो चंडिका बनेंगे, छोटी सी बात लेकिन इसमें बहुत गहरी बात है। चंडिका देवी को जब बनाते हैं ना लोग, एक दिन की होती, मिट्टी की बनाते हैं चंडिका देवी, शायद किसी को पता होगा, नहीं होगा तो मैं, क्योंकि हमने देखा है और जो देखा है वो बता रहे दृश्य। उसकी पूजा सबसे, मतलब तीनों चीज आ जाती है उसमें, चंडिका में पतित, भ्रष्ट, सब कुछ आ जाता है। उसको जो जीभ लगाते हैं, चंडिका देवी की जीभ निकाली जाती है, उसको जो बलि देते हैं उसकी जीभ लगाते हैं, उसको, उसके दो हाथ होते हैं, एक में अंडा होता ना वो रखते हैं, एक में खून रखते हैं। और बहुत, उतनी सी बात के लिए बाबा ने इतना गहरा शब्द कह दिया। तो ड्रामा के राज में एक और राज हमको ये पता चला कि बाबा की हर बात ना, बाबा इजी वे में बोल देता ना उसको, बच्चे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत गहरी, हर चीज बहुत गहरी बात है। बाबा ने फिर ड्रामा में, हमने ड्रामा के लिए भाई जी ने बोला, यहीं से शुरू हो गया ड्रामा हमारा। तो बाहर गए, ठीक है, कोई भी चीज सेवा डिपार्टमेंट में कोई भी सेवा, ड्रामा याद था। ड्रामा क्या क्या है, ड्रामा के राज, नाराज नहीं होना, ड्रामा का राज। आईटी डिपार्टमेंट में सेवा है हमारी, है भी वर्क कराते हैं, अब खुशी हो गई उधर, ड्रामा का राज है ये भी। भाई जी ने पैर सॉफ्टवेयर इंजीन, तो बोला टेबल उठानी है बाहर करो, झाड़ू पोंछा ले आओ। अब ड्रामा का राज तो याद था, बहुत खुशी कि ड्रामा का राज है। तो वो ड्रामा के राज में हमने बहुत सारे ऐसे राज जाने के, जिससे जो काम हमको पसंद नहीं थे ना, जो पसंद थे वो करने में तो हमको खुशी होती है, जो नहीं पसंद है उसको करने में और डबल खुशी होने लगी। ऐसा ड्रामा का राज जान, और हमको ये पता चला कि हम ड्रामा के राज में सो नहीं पाए, पहली बार हुआ। आज तक हम भर्ती करने के लिए सोचे, लेकिन एक घंटे बाद बिस्तर ही में नमाज पढ़ते पढ़ते सो गए। नमाज पढ़ना मतलब बैठे योग में है, पढ़ने लगे नमाज और सो गए धीरे से। लेकिन ड्रामा के राज ने सोने नहीं दिया, इतना हम स्टडी टाइम में भी आज तक कभी रिकॉर्ड है, कभी हम जागे नहीं। लेकिन ड्रामा का ऐसा राज पता चला कि रात भर नींद नहीं लगी, और दिन में ऐसा कि बाबा के कमरे में रात भर बैठे रह गए। तो ये भी ड्रामा का राज है। तो ड्रामा के बहुत सारे और भी, अगर टाइम समय से वो तो और आगे मैं बढ़ूं, बस। तो ये भी ड्रामा का राज है, और इतनी महान विभूतियों के सामने हम बैठे, ये तो बहुत बड़ा राज। तो और यहां आने के पहले हमारे साथ बहुत ऐसी दुर्घटनाएं घटी जो अचानक यहां पहुंच गए, जाना था हैदराबाद आ गए पांडव भवन, ये बहुत बड़ा शांति आना था पांडव भवन। फिर ट्रेन में जैसे ही बैठे, आना था पांडव भवन, पहुंच गए शांति भवन। एक अब वहां बोल दिया कि सेवा करनी है, तो अब ऊपर से अपन ने भी बोल दिया, ज्ञान में सुना था जो लोगों के अनुभव, कोई भी सेवा चलेगी। तो बाबा ने भी टेस्ट ले लिया, ठीक है कपड़े डिपार्टमेंट में जाना है, प्रेस होता है, फोल्डिंग करना है। अब तो बाहर से खुशी, अंदर से बाबा कैसी सेवा दे। फिर बाबा कमरे में गया, लेटा डाला। बाबा ऐसा खुश रहो, तुमने तो कहा था कोई उसमें किसी में भी सेवा चलेगी, चला। तो वो भी पेपर था, खुश हो गए। उस दिन से हमने खुशी खुशी किया, उसी में नशे में करने लगे, ठीक है। बाद में ऐसा हुआ, ऐसी कंडीशन फंसी कि वो किसी भाई को पांडव वन में जरूरत थी, कोई भाई हमको शांति वन में जानता था, ये तो आईटी डिपार्टमेंट में सेवा किया हुआ है, तो उनने बात की तो इधर पे आना हुआ। तो फिर उस समय थोड़ा नर्वस हो गया कि बाबा सब जानता है, बाबा हर परिस्थिति को जानता है, वो भी ड्रामा। तो सारे राज उधर, फिर बोला कि कोई राज होगा इधर पहुंचने में, तो पता चला यही राज था, और क्या क्या राज हैं, तो सब ड्रामा है। ओम शांति,
ओम शांति। अभी हम सब 7 तारीख की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, अभी हम सब ने सुना ड्रामा का राज, ऐसा तो आज तक हमने नहीं सुना था कि क्या क्या राज होते हैं ड्रामा के, कि नींद भी चले जाती है, बाबा के कमरे में दिन भर बैठ जाते हैं। तो देखो कितना राज है ड्रामा में। तो मुझे जो पॉइंट मिला था चार्ट रखने का, तो बाबा ने उसमें पूछा है कि स्वप्न कितने, तो अच्छे स्वप्न भी होते हैं, बुरे स्वप्न भी होते हैं। तो उसमें बाबा ने आगे लाइन कहा कि कई बच्चे हैं सच नहीं बताते हैं। तो चार्ट में हमें देखना है कि स्वप्न किस तरह के आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चार्ट रखने से हमारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तो हमारा कैरेक्टर में तो पूरा आएगा ABCD सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा कैरेक्टर भी सुधरता है चार्ट रखने से। तीसरी पॉइंट है कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि चार्ट रखने से हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो हमें ये भी चेक करना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। चौथा पॉइंट है कि खुशी किस वाली है, किस प्रकार की। हम किसी को दुख देते हैं तो भी हमें खुशी होती है, किसी को खुश करते हैं तो भी खुशी होती है। दो तरह की खुशी होती है हमारे जीवन में। किसी के साथ हमें ये दो चार शब्द कभी बोला होता है तो हमें जब मौका मिलता है तो हम उसको 10 शब्द सुनाते हैं, तो बोलता है आज थोड़ा दिल को राहत मिली, तो वो भी खुशी होती है। तो बाबा ने उसमें प्रकार पूछा है कौन सी प्रकार की खुशी है। पांचवी पॉइंट है बोल, व्यर्थ में तो टाइम नहीं बीत रहा है, फालतू बातें में तो टाइम नहीं बीत रहा है, ये रही बाबा की। और बाबा ने उसमें कहा है फालतू बातें और बोल भी, बाबा ने कहा कि कहीं हमारे बोल उल्टे सुलटे तो नहीं है। उल्टे सुलटे माने ऐसे बोल देते हैं कि व्यक्ति बाहर ही चला जाता सीधा, माने ज्ञान योग भी छोड़ देता, सेंटर आना भी बंद कर देता है, तो हमारे बोल का प्रभाव होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे बोल उल्टे सुलटे नहीं होने चाहिए, है ना, जो दूसरे को दुख पहुंचाए कष्ट पहुंचाए। तो फिर बाबा ने कहा समय सबसे ज्यादा चार्ट आप सबको रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम सबकी मंजिल सबसे ऊंची है, इसलिए चार्ट रखना चाहिए। और चार्ट रखने से ही हमें पता चलता है कि हम अपने मंजिल के कितने समीप पहुंच रहे हैं। और बाबा ने कहा चार्ट के लिए कि महारथी है जो भाषण करते हो, समझते हैं हम सब कुछ ठीक है, इसलिए चार्ट रखने की आवश्यकता नहीं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो चार्ट हमें रखना चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति। मुझे टॉपिक मिला था वरदान, वरदान था 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाले अचल अडल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, 1 स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा है उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। बाप आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, बाप की स्मृति आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप की स्मृति के साथ ड्रामा की स्मृति। अति आवश्यक है क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे, और नीचे ऊपर नहीं होंगे, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। अगर मुझसे जो थोड़ी भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूं।
ये ड्रामा में था,
ड्रामा के लिए अभी मैंने सुना, 2 शब्द एक्स्ट्रा चाहता हूं थोड़े 1 मिनट के लिए। परंतु ड्रामा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं ना, मुझे जीवन में क्या ये हुआ, मैं भक्ति मार्ग और साइंस और बाबा का ज्ञान है तीनों को मैंने उनका क्या कहना चाहिए उसे जी उस हिसाब से मैं लेकर चलता हूं। जैसे रामायण में कहा कि अभी जो ड्रामा के बारे में सुना था उस पर से बता रहा हूं कि क्यों कर तर्क बढ़ा वही साखा, एक लाइन है कुछ रामायण में, तर्क वितर्क क्यों करते हो, माने कि उसमें उसकी चौपाई का मैं एक सार बता दे रहा हूं कि तर्क वितर्क न करते हुए जो हुई है वही है वही जो राम रचि राखा। तो अब ये अगर ये इस पॉइंट को हम लेते हैं तो हम एकदम पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए रामायण में स्पष्ट कहा कि भाई कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करें तस्वर। वही बात बाबा ने यहाँ सबसे पहले हमें पुरुषार्थ के लिए कहा है, ड्रामा में जो होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले हमें पुरुषार्थ को सामने रखना है। दूसरा, साइंस में, साइंस के आधार पर हम क्या करते हैं, मेडिकल साइंस से जो है वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों तरह की तैयारी साथ में रखते हैं। किसी भी प्रकार के कोई दवाई देते हैं तो उसको एक्शन और रिएक्शन को दोनों ध्यान में रखते हो कि भाई पेशेंट का किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए ऐसी दवाई का तैयारी पहले से कर लेते हैं। वही उसी प्रकार का एग्जाम्पल एक महाभारत में है, अभिमन्यु और अर्जुन। अभिमन्यु के पास सिर्फ एक तरफ की विद्या थी, यानी कि उसको चक्रव्यूह में जाना आता था, चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। और अर्जुन के पास दोनों विद्या थी, चक्रव्यूह में जाना भी आता है और उससे बाहर निकलना भी आता है। तो वही संसार सागर में हम रहते हुए भी, कैसे संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे और प्यारे रहना और बाप के साथ रहना है, इसी के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।